ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं कम्मठजनियवेयण उवहि समुत्तिर्णये जिनेणमिं वेयण महाहियारम् यह श्री वीरसेन आचार्य रचित दौला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। दसवीं पुस्तक जो चतुर्थ वेदना खंड, उसमें वेदना अनुयोग द्वार अपनी बात चल रही है और 104 पृष्ठ पर हम आ गए हैं। अब बात यहाँ गुणित कर्मांशिक जीव की चल रही है, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस, उसकी कौन कौन सी बातें हैं, उसको हम डिटेल से देखते देखते हमने देखा था कि यव मध्य के ऊपर अंतर्मूर्त काल तक रहता है, ऐसी बात आई थी 28 नंबर के सूत्र में। उसके बाद 29 देखा ना हमने सूत्र। हाँ देखो, हमने नाइन्टी एट पर हाँ, तो वहाँ लिखते हैं अंतिम जीव गुणहानि स्थान में आवली के असंख्यातवे भाग काल तक रहा। यहाँ जीव गुणहानि उन्होंने डायरेक्ट बता दिया, वहाँ तो यव मध्य की बात की थी। जीव यव मध्य वाली जो है उसकी अंतिम गुणहानि ने उत्कृष्ट की ओर वाला अंतिम गुणहानि, यानी हमने जो वहाँ देखे थे ना कि 8, 7, 6, 5 ऐसे जहाँ जीवों की संख्या थी, यानी वहाँ योग अधिक से अधिक है। तो अंतिम जीव गुणहानि में वो भी कितना रहा, आवली के असंख्यात भाग काल तक रहा। तो वहाँ पूछा था यहाँ अंतर्मूर्त क्यों नहीं कहते हो, तो देखिए कोई भी योग स्थान में जीव अधिक काल नहीं रहता है, तो वहाँ कुछ समयों तक ऊपर नीचे के योग स्थान में चला जाएगा वो, वहाँ अनेक योग स्थान है ना, हमने देखे थे वहाँ, हमने 4 योग स्थान देखे थे समझाने के लिए, परंतु असंख्यात योग स्थान है, फिर भी वहाँ उसका जो रहना है वो आवली के असंख्यात भाग इतना ही होगा, वो भी असंख्यात है। और उसकी उन्होंने चर्चा समाधान ऐसा बताया कि वहाँ एकदम अंतिम जो है, अंतिम जो स्थान है वहाँ तो असंख्यात भाग वृद्धि असंख्यात भाग हानि इतने दो ही संभव है, अधिक संभव नहीं है। और उसके कारण मीमांसा करते हुए वो कैसे कैसे बढ़ते जाते हैं योग स्थान, उसकी चर्चा की थी। उसमें वो दुगुण वृद्धि के द्वारा वो समझाया था, ये जो सारे जो योग स्थान होते हैं उसमें योग बढ़ते 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 जाता है, किसी स्टेज पर दुगुना हो जाता है। जगन्य से शुरू किया था हमने, द्विंद्रिय के जगन्य से, फिर उसके आगे उतना ही बढ़ता बढ़ता चला जाएगा तो दोबारा दो बार स्थान हो जाए, यानी दुगुने स्थान होने के बाद ये दुगुना का और दुगुना यानी चौगुना हो जाएगा, और उससे दुगुने स्थान जाने के बाद वो जो चौगुने के दुगुने ने 8 गुणे हो गए, इसी क्रम से अंतिम दुगुण वृद्धि जहां होगी उसके आगे इतने स्थान नहीं है कि दो गुणा वृद्धि होगी, दो गुणा यानी संख्यात गुणा वृद्धि वहां नहीं होगी, तो क्या हो सकता है, असंख्यात भाग वृद्धि और संख्यात भाग वृद्धि इतनी पॉसिबल है वहां, वैसे हानि भी उतनी पॉसिबल है। ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो हानि होगी और जगन्य की ओर से उत्कृष्ट की ओर बढ़ेगा तो वृद्धि होगी, तो वहां अधिक वो हानि वृद्धि के स्थान है। एकदम अंतिम वाला जो स्थान है उसमें तो एक असंख्यात भाग वृद्धि और असंख्यात भाग हानि ये दो ही पॉसिबल है, वहां तो 3 हानि वृद्धियां भी नहीं होगी, इतनी बात हमने कल देखी। अब यहाँ हम
ये चर्चा यहाँ चल रही है कि हाँ,
अवली के असंख्यात भाग तक ही क्यों रहता है, अंतर्मूर्त क्यों नहीं कहते आप, उसकी यहाँ चर्चा चल रही है। उसके लिए वो ये एक शब्द यहाँ आता है जीव योग गुणहानी, और एक शब्द आता है दुगुण वृद्धि वाले स्थान। दुगुण वृद्धि में वो जघन्य से उत्कृष्ट तक दो गुना दो गुना दो गुना होता है, उसका जो योग है वो बढ़ता चला जाता है, उसकी अपेक्षा दुगुण वृद्धि कही थी। और यहाँ जो हमने जीव गुणहानि पहले देखी थी वो अंत की ओर यानी उत्कृष्ट की ओर वाले स्थान है। अब यहाँ हम 104 पृष्ठ पर दूसरा पैराग्राफ देखने जा रहे हैं। अब अंतिम खंड के जघन्य योग स्थान को विवक्षित करके वृद्धि की प्ररूपणा करते समय, अंतिम खंड ने हमने देखा था ना, वो तो अंतिम दुगुण वृद्धि के बाद जो कुछ बचा है उसमें भी, अंतिम खंड में उसमें भी कुछ योग स्थान है, उसमें जघन्य वाले योग स्थान से आगे वृद्धि होते होते क्या होगा, एक कम दुगुणे उत्कृष्ट संख्यात का विरलन कर विवक्षित योग स्थान को समखंड कर देने पर पूर्व खंडों के सदृश खंड होकर स्थित होते हैं। देखो उत्कृष्ट संख्यात में एक भी मिला तो असंख्यात हो जाते हैं, अब ये दुगुना उत्कृष्ट संख्या तो वो भी असंख्यात होगा, तो उतना विरलन करना और वहां के योग स्थान का जो योग है उसमें विभाजित करना। पूर्वोक्त एक खंड संबंधी प्रक्षेप भागहार का विरलन कर, यानी ऐसा करने पर वहां प्रक्षेप भागहार आया। अब उसको एक खंड संबंधी जो प्रक्षेप भागहार है, ये एक एक खंड के प्रति वो विरलन के प्रति एक एक दे दिया। अब यहाँ का जो प्रक्षेप भागहार है, प्रक्षेप निकालने के लिए जो यहाँ का भागहार है उसको विरलन करना, और ऊपरी विरलन के एक खंड को ग्रहण कर समखंड करके देने पर प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त होता है। यहाँ का प्रक्षेप कैसे निकालना उसके लिए उनको ने विधि बताई, क्योंकि जघन्य से आगे वाला स्थान फिर आगे वाला स्थान फिर आगे वाला, उसमें प्रक्षेप मिलाना पड़ेगा, तो प्रक्षेप मिलाने की ये पद्धति बताई। उसमें से एक प्रक्षेप को ग्रहण कर विवक्षित योग स्थान को प्रतिराशि करके, प्रतिराशि कराना भी उसको मूल राशि बनाएंगे हम, उसमें प्रक्षेप मिला देंगे तो क्या होगा, असंख्यात भाग वृद्धि होती है। देखो हमने पहले में पहले क्या किया था, विशिष्ट पर्टिकुलर योग स्थान के जितना योग है उसको विरलन राशि में विभाजित किया था। विरलन राशि कितनी थी, दुगुणे उत्कृष्ट संख्यात, उत्कृष्ट संख्यात का दुगुना करेंगे तो बीच वाला कोई मध्यम परिता संख्यात वाली कोई संख्या आने वाली है, तो उतने विरलन कर दिए यानी वो असंख्यातवा भाग हुआ। अब जो असंख्यातवा भाग है उसको भी हमने और एक दूसरा विरलन किया था प्रक्षेप भागहार का, उसमें फिर डिस्ट्रीब्यूट किया, तो मूल राशि का असंख्यातवा भाग ही वहां आता है, मूल राशि का असंख्यातवा भाग प्रक्षेप बन गया, यानी असंख्यात भाग उसमें मिलाने पर वृद्धि कितनी हुई कहेंगे हम, असंख्यात भाग वृद्धि। असंख्यात भाग वृद्धि क्यों है, अगले स्थान में हमने जिस विशिष्ट पर्टिकुलर स्थान से आगे वाला योग स्थान है उसमें असंख्यात असंख्यातवा भाग अधिक है, उसको कहते हैं असंख्यात भाग वृद्धि। उसको प्रतिराशि कर द्वितीय प्रक्षेप को मिलाने पर भी असंख्यात भाग वृद्धि ही होती है। अभी उसमें और एक प्रक्षेप मिलाएंगे तो भी असंख्यात भाग वृद्धि होगी, यानी दो प्रक्षेपों को मिलाए तो भी वो असंख्यात ही भाग है,
क्योंकि नहीं
नहीं नहीं दुगुनी वृद्धि तो होगी ही नहीं अभी इसमें, क्योंकि अंतिम है, गुण वृद्धि का यहाँ सवाल ही नहीं है। इस प्रकार तब तक असंख्यात भाग वृद्धि जाती है लिखाना होती जाती है चाहिए, कहाँ गया, असंख्या भाग वृद्धि होती जाती है। तब तक असंख्यात भाग वृद्धि होती जाती है जब तक विरलन मात्र प्रक्षेप प्रविष्ट नहीं हो जाते। हमने प्रक्षेप निकालने के लिए जो विरलन किया था ना प्रक्षेप भागहार का भाग देके, तो ये सभी विरलन उसमें उतने प्रक्षेप मिलाए तो भी असंख्यात भाग वृद्धि ही रही है, यानी एक प्रक्षेप मिलाए, दो बार मिलाए, तीन बार मिलाए, असंख्यात प्रक्षेप मिलाने पर असंख्यात भाग वृद्धि ही रही है। अभी वो वृद्धि, टोटल वृद्धि भी ज्यादा नहीं हुई है। इस प्रकार ये हो गया, यहाँ एक असंख्यात भाग वृद्धि ही है क्योंकि ऊपर योग स्थान का अभाव है। यहाँ तो एक ही बार होती है क्योंकि ऊपर योग स्थान ही नहीं है, क्योंकि अंत की ओर के हमने देखी है। इस अंतिम खंड को उत्कृष्ट संख्यात से खंडित करने पर वहां एक कम उत्कृष्ट संख्यात मात्र खंडों के जितने समय है उतने मात्र योग स्थान यदि ऊपर है तो संख्यात भाग वृद्धि हो सकती है। यानी इसके आगे यदि इतने योग स्थान होते तो जाके संख्यात भाग वृद्धि की संभावना थी, होते कहा ना, यदि होते तो ऐसा होता, परंतु ऐसा है नहीं क्योंकि इतने वे पाए नहीं जाते। हमने कल देखा था हजार को हमने अभी मान लेते एक 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 वृद्धि होती जाएगी तो कहीं जाकर वो दस की वृद्धि होगी, फिर और एक 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 बढ़ते बढ़ते वो बीस हो जाएगी, ऐसे करते करते सौ हो जाएगी, परंतु इतना बढ़ाने के लिए आगे स्थान ही नहीं है। एक प्रति योग स्थान तो एक एक ही बढ़ता है, अभी हमने जो देखा वैसे वहां प्रति योग स्थान एक एक प्रक्षेप बढ़ेगा, एक प्रक्षेप हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, असंख्यात भी प्रक्षेप मिला है तो भी असंख्यात भाग वृद्धि हो गई है उनकी, और आगे योग स्थान होते तो संख्यात भाग वृद्धि होती, परंतु वहां है ही नहीं है, ये बात बताना चाहते। इस प्रकार प्रथम खंड में तीन वृद्धियां होती हैं, अंतिम खंड में एक असंख्यात भाग वृद्धि होती है। कल जो समझाया था उसमें प्रथम खंड में तीन वृद्धियां होती है, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि और दुगुनी वृद्धि में हाँ संख्यात गुना वृद्धि पहले तो हो सकती थी क्योंकि वहां तो दुगुनी वृद्धि पॉसिबल थी, पर अंतिम दुगुण वृद्धि के बाद वो भी पॉसिबल नहीं है। तो वहां क्या लिखा था हमने, वृद्धि और हानि ऐसे तीन प्रकार की होती है। नहीं नहीं, वहाँ जीवों की संख्या है, हम यहाँ जीवों की संख्या नहीं देख रहे, योग देख रहे हैं। हाँ, योग के स्थान है अलग अलग। हाँ, क्योंकि अभी तो हमने समझाने के लिए चार ही योग स्थान लिए, वहाँ है असंख्यात योग स्थान, तो एक एक में एक एक प्रक्षेप मिला है, वहाँ भी जहाँ सात जीव, आठ जीव है, सात जीव है, छह जीव है और पांच जीव है, जीव कम हो गए परंतु योग बढ़ता गया उसमें, पांच वाले को मैक्सिमम योग है, तो वहां सात के बाद इतना कितना बढ़ेगा, असंख्यात भाग, असंख्यात भाग योग कितना बढ़ेगा, असंख्यात भाग ही बढ़ेगा, ये बात यहां बताना चाहते हैं। अब कहते हैं योग स्थान की अंतिम गुणहानि में रहने का काल आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण ही है, क्योंकि वहां असंख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुणहानि नहीं पाई जाती। ऊपर की ओर बढ़ेगा तो वृद्धि है बताए थे और नीचे की ओर आएगा तो हानि है, परंतु यहाँ असंख्यात गुणाक्रम से वो नहीं होगी। ये योग स्थान के अंतिम योग गुणहानि बताई है, वो जीव वाली यहाँ नहीं बता रहे, योग स्थान के अंतिम गुणहानि जो है उसमें रहने का काल आवली का असंख्यात प्रभाव है, और यहाँ असंख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुणहानि नहीं पाई जाती। जब योग स्थान की अंतिम गुणहानि में भी आवली के असंख्यात विभाग काल तक ही रहता है तो देखो यहाँ दो बातें बता रहे हैं, योग स्थान की अंतिम गुणहानि और जीव यौ मध्य जो रचना हमने देखी थी उसमें भी अंतिम गुणहानि। तो योग वाली जो अंतिम गुणहानि है जो हमने देखा था अंतिम दुगुण वृद्धि के बाद जो कुछ ऊपर बचा है, तो तो उसमें भी आउली के असंख्यात भाग काल तक ही रहता है, यानी वहां रहने का भी काल आउली का असंख्यात भाग है, क्योंकि वहां इतने योग स्थान कम है। तो इससे असंख्यात गुणीहीन अंतिम जीव गुणहानि में रहने का काल निश्चय से आवली के असंख्यात भाग प्रमाण ही ऐसा ग्रहण करना चाहिए। इतना यहाँ बताया कि जो योग स्थान की अंतिम गुणहानि है वो जीव गुणहानि से असंख्यात गुणा बड़ी है, तो योग स्थान की अंतिम गुणहानि में भी आवली के असंख्यात भाग काल तक रहता है, तो जीव गुणहानि तो उससे भी छोटी है, तो उसमें भी आवली के असंख्यात भाग काल ही रहेगा, यानी उससे भी कम काल वहां रहेगा। किसी एक योग स्थान में एक दो समय से अधिक वहां रहेगा ही नहीं, वो पलटते रहेगा। शंका, योग स्थान की अंतिम गुणहानि के असंख्यात भाग प्रमाण जीव गुणहानि होती है, यह बात किस प्रमाण से जानी जाती है? उसका समाधान, यह बात आगम के अनुकूल युक्ति से जानी जाती है, और वो युक्ति क्या है वो अब बता रहे हैं। यथा यदि जीव गुणहानि अंतिम योग गुणहानि को उत्कृष्ट संख्यात से खंडित करने पर एक खंड प्रमाण होती है, तो सब जीव दुगुणहानि शलाकाएं दुगुणे उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण ही होंगी, क्योंकि समस्त योगस्थान अध्वान के, समस्त योगस्थान अध्वान ने सभी योगस्थानों की संख्या, अध्वान ने काल, योगस्थान काल हमने किसको देखा था? जैसे हमने जो जीव यमोध्य रचना में हमने 32 माने थे, त्रस पर्याप्तों के योगस्थान हमने 32 माने थे ना, तो 32 निषेक माने थे, तो वो पूरा उसका अध्वान कहलाता है। तो समस्त योगस्थान अध्वान के साधिक अर्थ भाग में अंतिम योग दुगुण वृद्धि का अवस्थान है। क्या कहते हैं, जैसे हमने पहले जीव गुणहानि देखी थी, उसमें 32 देखा था अध्वान योगस्थान का, 32 निषेक देखे थे ना, उसमें से नीचे 3 गुणहानि देखी थी और ऊपर 5 गुणहानि देखी थी। ऊपर का अर्थ क्या है? उत्कृष्ट की ओर का। तो यहां कहते हैं साधिक अर्ध, समस्त योग स्थान के साधिक अर्ध भाग में अंतिम योग दुगुण वृद्धि का अवस्थान है। इसको हम समझते हैं, देखो चार्ट द्वारा समझेंगे। हमने 8 गुणहानि देखी थी वहां जीव यमोध्य की रचना में, ऐसे 32 देखे थे ना स्थान है, तो उसमें नीचे जहां 128 जीव है नीचे की ओर कितने देखे थे स्थान? 3 गुणहानि ने 12 स्थान देखे नीचे, और ऊपर 5 गुणहानि यानी 20 स्थान ऊपर देखे थे, टोटल 32 हुए। अभी 32 का आधा कितना हुए? 16 होते हैं, 16 से भी साधिक करना, यानी ये नीचे 12 और एक गुणहानि गई, 4 गुणहानि तो नीचे गई और 4 गुणहानि ऊपर है, तो उसमें भी साधिक करना है जो कुछ है। तो यहां पर अंतिम दुगुण वृद्धि का स्थान होता है। अभी योग स्थान की अपेक्षा बात करना है, जघन्य से उत्कृष्ट की ओर योग बढ़ता 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 चला जाता है, तो अंतिम दुगुण वृद्धि का स्थान कहां पर है? वो जीवों की संख्या भी मत ले लो ख्याल में, अब योग कितना है उतनी बात करना। तो इसके आगे दुगुण वृद्धि का स्थान नहीं होगा, तो क्या कहते देखो, फिर समस्त योग स्थान अध्वान के साधिक अर्ध भाग में अंतिम योग दुगुण वृद्धि का अवस्थान है। उसके आगे दुगुण वृद्धि नहीं होगी, थोड़ी थोड़ी वृद्धि होते होते वो उत्कृष्ट योग तक पहुंच जाएगा, परंतु 2 गुणा वृद्धि का अर्थ होता है मिनिमम संख्यात गुणा वृद्धि, तो संख्यात गुणा पॉसिबल ही नहीं है आगे, तो असंख्यात भाग वाली जो बात की थी ना उन्होंने, अब कहते हैं अब ये पॉसिबिलिटीज बताते हैं। वहाँ संख्या कितनी है उसकी बात बताई थी उन्होंने, जीवों की संख्या बताई थी, उसके अपेक्षा हमने गुणहानि बताई थी। दुगुनी वृद्धि नहीं है नीचे, हाँ हाँ, पर योग स्थान, हाँ दुगुनी वाली वृद्धि वहाँ पर नहीं होगी। असंख्या भाग असंख्या वो वृद्धि का प्रोपोर्शन जो कुछ है, क्योंकि योग ज्यादा है ना, योग बहुत बढ़ रहा है और उसकी अपेक्षा वृद्धि उतनी ही है। नीचे योग कम था और वृद्धि का प्रक्षेप उतना उतना ही है, अब उतना उतना प्रत्यक्ष बढ़ता है, तो ये टोटल योग क्या हो असंख्यात भाग हो जाता है ना। जैसे चार चार से वृद्धि हो रही है तो 100 में चार चार बढ़ेंगे और आगे चलकर लाख में चार चार बढ़ेंगे, तो लाख के 2 लाख नहीं हो सकते, ऐसी बात है ना।
तो वृद्धि तो सही है, अभी
उसके अपेक्षा, हाँ उसका असंख्यात भाग ही सबको मिलकर भी उसका असंख्यात भाग हो जाता है, यही बात बताना चाहते। वो जो प्रक्षेप है पूर्व का, प्रक्षेप सब जगह सेम है परंतु वहां का योग ज्यादा है इसलिए वो उसका असंख्यात भाग ही रह जाता है, सबकी टोटल भी असंख्यात भाग ही रहता है। अब ये पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं, यदि एक खंड में, पहले क्या बताया था देखो, जो एक खंड में देखो लास्ट पेज पर, यदि जीव गुणहानि अंतिम योग गुणहानि को उत्कृष्ट संख्या से खंडित करने पर एक खंड प्रमाण होती तो, यानी योग गुणहानि में उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण जीव गुणहानियां होती तो की बात यहां बताई उन्होंने। ऊपर तो बताया है कि असंख्यात होती है, अब पॉसिबिलिटीज क्या, यदि उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण होती तो क्या होता, कि जीव दुगुणहानि शलाका है कि कितनी गुणहानियां होती उसकी, उसमें दुगुणे उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण होती। अब यहां दूसरी पॉसिबिलिटी बता रहे, 106 पृष्ठ पर दूसरी लाइन, यदि एक खंड में दो दो जीव गुणहानियां पाई जाती तो सब जीव गुणहानियां चौगुणे उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण हो जाती, अथवा यदि एक खंड में तीन तीन जीव गुणहानियां पाई जाती तो सब जीव गुणहानियां छह गुणे उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण होती है। पहले उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण खंड किए थे ना, अब एक खंड में दो दो होती तो, एक खंड में तीन तीन होती तो, इस तरह से बात कर रहे। अथवा यदि एक खंड में चार जीव गुणहानियां पाई जाती है तो सब जीव गुणहानियां 8 गुणे उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण होती है, परंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि पल्योपम के असंख्यात वे भाग मात्र जीव गुणहानियां होती है, ऐसा परम गुरु का उपदेश है। ये तो सूत्र का ही वचन है कि जीव गुणहानियां कितनी है, तो पल्योपम के असंख्यात वे भाग, जीव गुणहानिया ने जो हमने जीव यव मध्य रचना देखी थी उसमें नाना गुणहानि का प्रमाण हमने देखा था, पल्य के असंख्यात वे भाग होता है। इसलिए एक खंड में पल्योपम के असंख्यात वे भाग मात्र जीव गुणहानियां होना चाहिए, यथा दुगुने उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण खंडों में यदि पल्योपम के असंख्यात वे भाग मात्र जीव गुणहानी शलाकाएं प्राप्त होती है तो एक खंड में कितनी प्राप्त होगी। इस प्रकार समान राशियों का अपनयन करके, ये त्रैराशिक मानना है ना, दुगुने उत्कृष्ट संख्यात में पल्य का असंख्यात भाग, तो एक खंड में कितने, तो दोगुणों का अपनयन करके दुगुने उत्कृष्ट संख्यात का जीव गुणहानि शलाकाओं में भाग देने पर पल्योपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण एक खंडगत जीव दुगुण हानि शलाकाएं प्राप्त होती है। यानी उसको पल्ले के असंख्यातवे भाग को दुगुने उत्कृष्ट संख्यात का भाग देंगे तो भी वो पल्ले का असंख्यातवा भाग ही होगा। इससे सिद्ध है कि अंतिम योग गुण वृद्धि के असंख्यातवे भाग प्रमाण जीव गुणहानि होती है। जीव गुणहानि में जो वहां के योग स्थानों की जो संख्या है वो दुगुण योग जो योग गुणहानि देखी उन्होंने उससे असंख्यातवे भाग प्रमाण। अब ये यहाँ योग की बात थोड़ा हम सांस ले सकते हैं। विनोद भाई इसीलिए गए, तीन दिन नहीं आए। पढ़ लिया आपने, अच्छी बात है। नारक भव का आश्रय कर कहे गए ये सब सूत्र गुणित कर्मांशिक के सब भवों में पृथक पृथक कहने चाहिए। यह हमने ऐसा जीव लिया है कि उसका अंतिम की ओर उसने नारक भव, परंतु जो गुणित कर्मांशिक जीव है सभी भवों में उसके ऐसे उत्कृष्ट की ओर के ही योग स्थान होंगे उसके अधिक से अधिक। हमने देखा था बहुत बहुत बार उसने उत्कृष्ट योग के द्वारा यह कर्म का ग्रहण किया था, इसीलिए उसको गुणित कर्मांशिक कह रहे हैं। उसकी सत्ता में मैक्सिमम नंबर ऑफ परमाणु पड़े हैं, उसकी बात यहाँ ले रहे हैं। तो सभी भवों में ऐसा ही कहना चाहिए क्योंकि ये सूत्र देशामर्शक देखे जाते हैं। यहाँ नरक भव का आश्रय करके बताया है, परंतु ऐसी बात उसके अन्य भवों में भी समझना चाहिए। यदि कहा जाए कि एक भव में यव मध्य के ऊपर और अंतिम गुणहानि में अंतर्मूर्त व आवली के असंख्यात भाग काल तक रहता है, सो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जहां तक संभव है वहां तक वहीं पर अवस्थान कहा गया है। क्या कहते हैं? यदि कोई कहे कि एक भव में ही ये पॉसिबल है तो ऐसा नहीं है। जहां तक पॉसिबल है, नहीं तो 2000 सागर त्रस्त स्थिति है, तो जब कहीं जिस किसी भव में जहां पॉसिबल है तो वहां पर दो बातें कही उन्होंने, यव मध्य के ऊपर अंतर्मूर्त और अंतिम गुणहानि में आवली का संख्या का भाग। ये यव मध्य क्या अर्थ है? काल यव मध्य हमने पहले देखा था, वो अंतर्मूर्त रहता है वहां जीव यव मध्य नहीं लेना, यहाँ तो काल यव मध्य की बात है, और अंतिम गुणहानि यानी जीव गुणहानि लेना है, वहां तो आवली का असंख्या का भाग, तो जहां वहीं पर मैक्सिमम उसका अवस्थान होता है, ये बात उन्होंने सिद्ध की। अब 30 नंबर का सूत्र पढ़ते हैं। दुचरिम तिचरिम समये उक्कस संकिलेशम गदो, द्विचरम व त्रिचरम समयों में उत्कृष्ट संकलेश को प्राप्त हुआ। ये सातवें नरक का नारकी है, 33 सागर आयु वाला, उसकी बात हो रही है। जीवन की अंत की ओर तो इन्हें अंतर्मूर्त कहाँ रहता है, अवली का संख्या का भाग कहाँ रहता है, वो बात की। अब द्विचरम और त्रिचरम यानी अंत से दूसरा समय और अंत से तीसरा समय, उसमें उत्कृष्ट संकलेश को प्राप्त होता है। जहां संकलेश ज्यादा है वहां ज्ञानावरणादि कर्मों का वो अधिक परमाणु ग्रहण कर। हर एक भाव में ऐसा लेना, हर एक भाव में जब कभी पॉसिबल है वो उत्कृष्ट योग से ही वो ग्रहण करता रहता है। हमने देखा था ना, वो पर्याप्त काल भी ज्यादा होता है, पर्याप्त काल कम होता है, ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें होती है कि जहाँ उसके योग अधिक से अधिक हो सकता है,
जिस भाव में
है उस भाव के अंदर मैक्सिमम वहां तक। और वो एकांत अनुवृद्धि में भी हमने देखा था अधिक अधिक वृद्धि से बढ़ता है, और पर्याप्त काल में भी हमने देखा था ये उपपाद में भी वो जघन्य उत्कृष्ट होता है, उसमें भी जहाँ उत्कृष्ट उपपाद होता है उसको लिया था। ये हर भाव में उसकी पॉसिबिलिटी लेना है। अब शंकाकार पूछता है, द्विचरम व त्रिचरम समयों में उत्कृष्ट संकलेश को किस लिए प्राप्त कराया? ये द्विचरम त्रिचरम की बात क्यों ली यहाँ पर? उसका समाधान, बहुत द्रव्य का उत्कर्षण कराने के लिए उन समयों में उत्कृष्ट संक्लेश को प्राप्त कराया गया है। संक्लेश परिणाम के कारण वो उत्कर्षण होता है, फिरने के बजाय वो उत्कर्षण करके अब जितनी स्थिति पॉसिबल थी उतना ऊपर गया, क्योंकि कर्मस्थिति हमने देखे थे, कर्मस्थिति तो जितनी जो है बांधी थी तब की बात है, उससे ऊपर तो बढ़ेगी नहीं, उससे ऊपर तो उत्कर्षण होगा नहीं, फिर भी द्विचरम त्रिचरम ये पॉसिबल है उसकी बात यहाँ की। शंका, यदि ऐसा है तो उक्त दो समयों को छोड़कर बहुत समय तक निरंतर उत्कृष्ट संक्लेश को क्यों नहीं प्राप्त कराया गया? तो निरंतर ही संक्लेश रहने दो ना, ऐसा कहते। उसका समाधान, नहीं, क्योंकि इन दो समयों को छोड़कर निरंतर उत्कृष्ट संक्लेश के साथ बहुत काल तक रहना संभव नहीं है। वो संक्लेश परिणामों में भी वो वेरिएशन होते जाता है ना, उतना का उतना परिणाम तो हर समय नहीं रहेगा। शंकाकार पूछता है, इस सूत्र को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इस सूत्र के अर्थ की प्ररूपना संक्लेशावास सूत्र से ही हो जाती है। ये याद है संक्लेशावास क्या है? हाँ, छह आवास हमने देखे थे, भवावास, योगावास, संक्लेशावास, प्रदेश विन्यासानावास, ऐसा कुछ था, यानी उत्कर्षण अपकर्षण होता है, और आयु के संबंध में आवास हमने देखे थे। देखो, हमने ये पहले भी देखा था, इसको प्रस्तावना चार पर है और पेज नंबर 50 पर है, पेज नंबर 50। इंट्रोडक्शन में भी चार पृष्ठ पर है, पहले इंट्रोडक्शन में देखते हैं, फिर 50 पृष्ठ पर देखेंगे, प्रस्तावना वाला चौथा पृष्ठ। देखो, ये स्वामित्व वाला जो दूसरा प्रकरण है उसमें सातवीं लाइन में भवावास, भववास है ना, उसको भवावास किया था हमने, उसका अर्थ क्या है? पर्याप्तों में उत्पन्न होता हुआ दीर्घ आयु वालों में, अपर्याप्तों में उत्पन्न होता हुआ अल्प आयु वाले में ही जो उत्पन्न होता है, इसको भवावास कहता। अद्धावास नहीं, ये अद्धावास हुआ, काल हुआ ना, ये अद्धावास हुआ। हाँ, और उसमें उसकी जो ऊपर की है ना, भवावास के ऊपर की, ये इतना घोटाला है सर। भवावास हमने ठीक पढ़ा, ये अद्धावास है, वो नीचे की ओर चाहिए। देखो, तथा दीर्घ आयु वालों में उत्पन्न होकर के जो सर्व लघु काल में पर्याप्तियों को पूर्ण करता है वो अद्धावास में आया, ये अद्धावास नीचे की लाइन में चाहिए था। और जब जब आयु को बांधता है तत् प्रायोग्य जघन्य योग के द्वारा ही बांधता है, यह आयु आवास हुआ। अब कहते, जो उपरिम स्थितियों के निषेक के उत्कृष्ट पद को, अधस्थन स्थितियों के निषेक के जघन्य पद को करता है। यहाँ जो निषेक ऊपर और नीचे की स्थिति बताई है, ये कर्मों की निषेक रचना होती है ना, उत्कर्षण होके ऊपर चले जाते हैं। और हमने देखा था कि प्रदेश विन्यास, यानी जो हम हमेशा क्या देखते हैं, नीचे की ओर ज्यादा परमाणु, ऊपर की ओर कम परमाणु, जब जब बहुत संक्लेश के साथ आयु कर्म बांधता है तो नीचे की ओर कम होते, ऊपर की ओर ज्यादा होते परमाणुओं की संख्या, और उत्कर्षण भी होता रहता है, तो परमाणु नीचे के निषेकों में से ऊपर के निषेकों में चला जाते हैं। तो उसी को कहा है अपकर्षण उत्कर्षण आवास अथवा प्रदेश विन्यास आवास। अब योगावास किसे कहना? बहुत बहुत बार जो उत्कृष्ट योग स्थानों को प्राप्त होता है, अभी जो हमने योग स्थान की बात की थी ना, उसको योगावास कहता है। अब संक्लेशावास किसको कहना? बहुत बहुत बार जो बहुत संक्लेश परिणामों को प्राप्त होता है, यह मंद को हमने बहुत किया था करेक्शन, मंद निकाल कर मिला सेंटर में है, हाँ, मंद को निकाल दो वहां। बहुत बहुत बार जो बहुत संक्लेश परिणामों को प्राप्त होता है उसको संक्लेशावास कहते हैं। ये तो ये आवास हमने वहां देखे थे जो 50 पृष्ठ पर भी है, देखो पंद्रहवें सूत्र में हमने क्या देखा था, वहां परिभ्रमण करने वाले उक्त जीव के पर्याप्त भव बहुत थोड़े और अपर्याप्त भव बहुत होते हैं, नहीं अपर्याप्त भव थोड़े होते हैं और पर्याप्त बहुत होते हैं, इसको भवावास कहा था। अब 16वें सूत्र में कहते हैं पर्याप्त काल दीर्घ और अपर्याप्त काल थोड़ा होता है, इसको अद्धावास कहा था। 17वें नंबर के सूत्र में हमने देखा था जब जब आयु को बांधता है तब तब उसके योग्य जघन्य योग से बांधता है, यह आयु आवास हो गया। अब कहते उपरिम स्थितियों के निषेक का उत्कृष्ट पद होता है, ऊपर के निषेक जो है कर्म की रचना में उसमें ऊपर परमाणु की संख्या ज्यादा है, नीचे की स्थितियों के निषेक का जघन्य पद होता है, इसको अपकर्षण उत्कर्षण आवास कहा था।
अब उन
उदय की ओर उदय वाली, यह 18वां सूत्र हुआ। अब 19वें सूत्र में कहते हैं बहुत बहुत बार उत्कृष्ट योग स्थानों को प्राप्त होता है, इसके द्वारा योगावास की प्ररूपना की। और 20वें सूत्र में कहते हैं बहुत बहुत बार बहुत संकलेश परिणाम वाला होता है, उसको हमने संकलेशावास कहा वहां। तो अब कहते हैं अपने अभी मूल पृष्ठ पर आ जाना, 107 नंबर पर, वहां आप रेफरेंस लिख के रखो चलेगा, पेज 50 और प्रस्तावना का पृष्ठ 4। अब कहते हैं प्रश्नकार ने क्या पूछा था, अभी इसका आपको अभी प्रश्नकार ने पूछा है, ये जो सूत्र आपने बताया यहाँ पर कि द्विचरम तिरचरम में उत्कृष्ट संकलेश को प्राप्त हुआ, ये बताना नहीं चाहिए था, अननेसेसरी है, क्योंकि इस सूत्र के अर्थ की प्ररूपना, सूत्र में जो बताना चाहते हैं वही बात संकलेशावास सूत्र से ही हो जाती है। पहले हमने संकलेशावास का सूत्र देखा था कि बहुत बहुत बार बहुत संकलेश को प्राप्त होता है, तो यहाँ द्विचरम तिरचरम की अलग से बात क्यों उठाई आपने, उसका समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि संकलेशावास सूत्र से जो नारक भव के अंतिम समय में उत्कृष्ट संकलेश का प्रसंग प्राप्त था, उसका प्रतिषेध करना इस सूत्र का प्रयोजन है। क्या कहते हैं संकलेशावास क्या कहेगा, अंतिम समय में उत्कृष्ट संकलेश, तो कहते उसका निषेध करना था, अंतिम समय वाला निषेध करना है, अंतिम समय में अगर अंत की ओर वाला, क्योंकि अंतिम यानी वहां से देखो त्रस पूरे त्रस का हमने अंतिम समय नहीं कह सकते, क्योंकि नरक से तो एक इंद्रियों में जाएगा नहीं, ख्याल है ना, होगा एक छोटा भाव उसका कोई तिरंच वाला वहां से चला जाएगा, परंतु यहाँ क्या कहते अंतिम समय का निषेध करना है। हाँ वो अंतिम समय का क्यों निषेध करते वो भी बताएंगे अभी, तो शंकाकार तो थोड़े छोड़ने वाला है। तो कहते उत्कृष्ट संकलेश का नरक भाव के अंतिम समय में प्रतिषेध किस लिए किया जाता है, उसका समाधान, क्योंकि वहां अपकर्षण के होने पर भी द्रव्य का विनाश नहीं होता, अपकर्षण होता है तो नीचे आता है, यहां हमको मैक्सिमम चाहिए द्रव्य अधिक से अधिक, अंतिम इस नरक भोग के अंतिम समय में कहेंगे उसका द्रव्य मैक्सिमम है। कहते चरम समय के पहले तो सर्वत्र यथा समय उत्कृष्ट संकलेश ही होता है, क्योंकि ऐसा नहीं मानने पर संकलेशावास सूत्र के निष्फल होने का प्रसंग प्राप्त होता है। यानी उत्कृष्ट संकलेश जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ होता ही है, परंतु अंतिम समय में वो वहाँ नहीं बताया है। वहाँ तो जो है वो सारा उनको गुणित कर्मवंशिक वाला जीव उस समय होता है अंतिम समय में, ये सिद्ध करना है। अब 31वें सूत्र में कहते हैं, चरिम दुचरिम समय उक्कस्य जोगम गदो, चरम और द्विचरम समय में उत्कृष्ट योग को प्राप्त हुआ। पहले संकलेश की बात की, अब योग की बात करें। शंका, चरम और द्विचरम समय में उत्कृष्ट योग को किस लिए प्राप्त कराया? उसका समाधान, उत्कृष्ट योग से बहुत द्रव्य का संग्रह कराने के लिए उक्त समयों में उत्कृष्ट योग को प्राप्त कराया है। ये संग्रह में किसका अधिक से अधिक मैक्सिमम द्रव्य है वो बताना था। शंका, यदि ऐसा है तो दो समयों के सिवा निरंतर बहुत काल तक उत्कृष्ट योग से क्यों नहीं परिणाम आया? उसका समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि निरंतर उत्कृष्ट योग में तीन आदि समय तक परिणमन करते रहना संभव नहीं। तीन आदि यानी तीन और आगे वाले, तो कितना मैक्सिमम दो ही समय तक उत्कृष्ट योग में रह सकता है, इसलिए चरम और द्विचरम दो ही समय लिए। पलटता है ना योग स्थान, उनके आगे नीचे ऊपर होते चले जाते हैं, ये उत्कृष्ट योग वाला स्थान लिया है तो दो समयों तक ही लिया उसने। शंका, इस सूत्र की रचना नहीं करना चाहिए, क्योंकि योगावास सूत्र से इस सूत्र के अर्थ का कथन हो जाता है। योगावास अभी हमने देखा था, बहुत बहुत बार उत्कृष्ट योग होता है उसका। तो कहते यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि संकलेश के समान उत्कृष्ट योग का कर्म स्थिति के भीतर प्रतिषेध नहीं है, यह बतलाना इस सूत्र का प्रयोजन है। यह कर्म स्थिति के भीतर की बात चल रही है, किसी पोजीशन पर उसने मैक्सिमम कर्म बांधे हैं, ऐसे जीव को कर्म स्थिति में से 2000 सागर कम करके पहले बादर पृथ्वी का एक में घुमाया, फिर वहां से आकर जो बची कुची 2000 सागर की जो स्थिति है उसमें वो अन्य अन्य भाव में अभी वो घूम रहा है, और उसमें वो अंत की ओर नरक में आ गया है। वो जो कर्म स्थिति वो पहले समय में बांधी थी ना, उसके कुछ परमाणु अभी तक पड़े हैं। हाँ, आपका प्रश्न है, डेढ़ गुणहानि प्रमाण कर्मों की सत्ता में पड़े। हाँ, वो डेढ़ गुणहानि प्रमाण सत्ता में हमेशा रहते हैं, उसकी बात है ना, यानी हर समय खिरते भी रहते हैं, नए बनते भी रहते हैं। वो डेढ़ गुणहानि प्रमाण उसकी जो बात बताई, उसमें भी उत्कृष्ट जगन्य होगा कि नहीं होगा? उसके अंदर भी उत्कृष्ट वाला जीव लेना है, वो कैसे हो सकता है, उसकी बात यहाँ चल रही है। अब ये 32 नंबर का सूत्र 109 पृष्ठ पर हम देखते हैं। चरिम समय तब भवत्थो जादो, तस्स चरिम समय तब भवत्थस्स नाना वर्णीय वेयना दवदो उक्कस्सा। चरम समय में तद्भवस्थ हुआ, तद्भवस्थ है ना, उसी भव में अभी है ना, नारकी का चरम समय बता रहे। उस चरम समय में तद्भवस्थ हुए जीव के ज्ञानावरण की वेदना द्रव्य की अपेक्षा उत्कृष्ट होती है। द्रव्य की अपेक्षा यानी संख्या की अपेक्षा, द्रव्य यानी संख्या, नानावर्णीय ज्ञानावरणीय के जो द्रव्य यानी वेदना है यानी कर्म, वेदना द्रव्य की अपेक्षा उत्कृष्ट होती का अर्थ होता है उनकी संख्या, परमाणुओं की संख्या उत्कृष्ट है, मैक्सिमम है। अभिशंका, यही नारक भव के अंतिम समय में उत्कृष्ट स्वामित्व किस लिए दिया जाता है? उसका स्वामी कौन है, उसकी चर्चा चल रही है अपनी। ये 32 सूत्रों के द्वारा वही बात आ रही है। तो अंतिम समय में क्यों लिया उसको? क्योंकि वो कर्म स्थिति का अंतिम समय ऐसा कुछ लिया था ना उन्होंने, उसका समाधान नहीं, क्योंकि व्यक्ति स्थिति का अनुसरण करने वाली ही शक्ति स्थिति होती है, उससे अधिक नहीं होती। ये कुछ याद आता है, ये पढ़ा था पहले। हाँ देखो, कभी कोई जीव ने कोई कर्म बांधा है, अब तीस कोड़ा कोड़ी का हम लेंगे ना, ज्ञानावरणी की बात चल रही है, उत्कृष्ट है, तो निषेक रचना होती है, यानी क्या होता है, आबादा काल 3000 वर्ष का छूटता है, उसके बाद एक समय, दो समय, तीन समय, ऐसे 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक के कर्मों का रचना है, तो उसमें किसी कर्म परमाणु ऊपर नीचे होते ही चले जाते हैं, तो ऊपर अधिक से अधिक कहाँ तक जाएंगे, तो 30 कोड़ा कोड़ी। अभी मान लेते उसमें 2 कोड़ा कोड़ी निकल गए, नहीं 20 कोड़ा कोड़ी निकल गए मान लेते, तो 10 कोड़ा कोड़ी तक ही उसकी स्थिति, वो शक्ति स्थिति उतनी ही है। अभी नया बंध 30 कोड़ा कोड़ी का भी करेगा, तो भी जो पूर्व में बांधे हुए परमाणु कहाँ तक ऊपर चले जा सकते हैं, तो 10 कोड़ा कोड़ी तक। नया नया तो बंध होता ही रहेगा, परंतु ऐसा अगर होता है उसके भी ऊपर चले जाएंगे, तो अनादि से कर्म वहां ही रहेंगे ना, उत्कर्षण होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, वो कभी खिरेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो व्यक्त स्थिति का अनुसरण करने वाली ही शक्ति स्थिति होती है, उससे अधिक नहीं है, ये हमने पहले भी देखा था, पेज नंबर 42 निकाल। यहाँ शंका समाधान जो है ना, ऊपर से 1, 2, 3, 4, 5 पांचवी लाइन में जो समाधान लिखा है उसका, व्यक्त अवस्था को प्राप्त हुई कर्म स्थिति, यहाँ का जो वाक्य मुझे कुछ अटपटा लगता है, पहले मैं यहाँ के पढ़ती हूँ। व्यक्त अवस्था को प्राप्त हुई कर्म स्थिति और शक्ति रूप कर्म स्थिति का अनुसरण करने वाली शक्ति रूप कर्म स्थिति होती है, परंतु ऊपर देखो प्राकृत में क्या लिखा है, वत्ति कम्मठिदि अनुसारिणी सत्ति कम्मठिदि ती वयनादो, वहां क्या लिखा है, व्यक्त कर्म स्थिति को अनुसरण करने वाली शक्ति कर्म स्थिति होती है, ऐसा वहां। और वही हाँ 129 लिखा है, लब्धिसार समय ज्ञान चंद्रिका, लब्धिसार निकालेंगे वहां, तीसरा भाग पीछे की ओर होगा। हाँ, रेना बहन को उठाते, ये न्यूज़पेपर का कवर डाला है पीछे, पीछे की ओर होगी। तीसरा भाग है पीछे की ओर, न्यूज़पेपर वाला कवर है उसको डाला है, तृतीय है चलेगा, बस बस जरूर नहीं दूसरी में। 129 पृष्ठ पर हमने देखा था, देखो वहां लिखते हैं शक्ति स्थिति क्या है, तो विवक्षित समय प्रबद्ध का जो अंत का निषेक, ताके तो सर्व ही स्थिति व्यक्ति स्थिति है, जैसे 30 कोड़ाकोड़ी का बांधा है तो अंतिम निषेक है ना, उसकी व्यक्त स्थिति भी उतनी ही है, उसके नीचे नीचे के निषेक के क्रम ते एक समय घाटी, दो समय घाटी आदि स्थिति व्यक्त स्थिति है, जैसे हमने आबादा काल और एक समय वाली, उसकी व्यक्त स्थिति कितनी है, 3000 वर्ष और एक समय, ये उसकी व्यक्त स्थिति है, उसको व्यक्त स्थिति कहते हैं। बहुरी प्रथमादि निषेक निकई सर्व ही स्थिति शक्ति स्थिति है, सो उत्कर्षण किया द्रव्य को जेती शक्ति स्थिति हुई तहा पर्यंत ही दीजिए है, 3000 वर्ष और एक समय वाली उसकी व्यक्त स्थिति कितनी है, 3000 वर्ष और एक समय, और उसकी शक्ति स्थिति कितनी है, तो 30 कोड़ा कोड़ी जितनी, तो वहां तक उसका उत्कर्षण हो सकता है, ये बात बताए, उसके ऊपर नहीं जाएगा कोई भी परमाणु। हाँ 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 ऊपर से भी नीचे आते हैं अपकर्षण होके, हाँ हो गए तो ही हाँ
तो पहले सत्ता में कर्म होंगे तो
यानी इसकी व्यक्त अवस्था को प्राप्त हुई कर्म स्थिति और शक्ति रूप कर्म स्थिति का अनुसरण करने वाली शक्ति रूप कर्म स्थिति होती है। और यहाँ लिखते हैं अपने 109 पृष्ठ पर व्यक्ति स्थिति का अनुसरण करने वाली ही शक्ति स्थिति होती है, उससे अधिक नहीं होती। उसको अभी बताएंगे। इसका कारण यह है कर्म स्थिति के प्रथम समय में बंधे हुए कर्मस्कंधों का कर्म स्थिति से आगे के समयों में अवस्थान नहीं पाया जाता। पहले समय में जो बांधे हैं, मान लेते हैं 30 कोड़ा कोड़ी तक बांधे हैं, तो वे कोई भी परमाणु उससे आगे नहीं पाए जाएंगे। उस काल के बाद उनका एग्जिस्टेंस सत्व नहीं रहेगा। आगे भी ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है, इसलिए यदि कोई कहे कि वहां उत्कृष्ट स्वामित्व देना योग्य है सो यह बात भी नहीं है। कोई कहेंगे बाद में भी तो बनता रहता है ना, तो बाद में उसका उत्कृष्ट स्वामी बाद में कहो, पहले वाले उस समय में बंधे हुए निकल गए तो क्या बात है, ऐसे कोई कहता है तो वो बात भी नहीं है, क्योंकि उसके बिना उपपाद योग के निमित्त से प्राप्त होने वाले द्रव्य से गुणित कर्मांशिक के उदय को प्राप्त हुआ गोपुच्छा का द्रव्य बहुत पाया जाता है। यानी उसके बिना, यानी यहां अगर हम उसको नहीं कहेंगे गुणित कर्मांशिक तो आगे उपपाद योग होगा, और वहां प्राप्त होने वाले जो गुणित कर्मांशिक का है जो मिलने वाला द्रव्य, उससे जो उदय रूप जो है गोपुच्छा है नहीं, वो उदय रूप जो उदय रूप द्रव्य बहुत ज्यादा पाया जाता है, वहां बहुत उसका खिरना ज्यादा हो जाता है। फिर शंका, आयु बंध के अभिमुख हुए जीव के अंतिम समय में उत्कृष्ट स्वामित्व क्यों नहीं दिया जाता? आयु बंध के अभिमुख हम देखते ना, वो त्रिभाग में होती है, अभी नारकी है तो अंतिम 6 महीने बाकी है, तो आयु बंध के अभिमुख, अभिमुख यानी सन्मुख, तो आयु बंध वाला करने वाला जीव ऐसा जो है उसके पहले पहले उस समय उसको स्वामित्व उत्कृष्ट द्रव्य का स्वामित्व क्यों नहीं कहते? तो यह कोई दोष नहीं, क्योंकि एक तो आयु बंध के काल में भी तात्कालिक ज्ञानावरण के बंध से गुणित कर्मांशिक के उदय को प्राप्त हुई गोपुच्छा स्तोक पाई जाती है, यानी वहां उदय में आने वाले कर्म कम है। और दूसरा पॉइंट, आयु बंध के काल में संचित हुए द्रव्य से आगे बहुत द्रव्य का संचय देखा जाता है, क्योंकि आयु बंध के बाद भी उसका वो संक्लेश परिणाम और अधिक द्रव्य लेना, योग ज्यादा होना, ये वहां भी पाया जाता है, इसलिए ऐसा जीव लिया वो अंतिम समय वाला। हाँ, आयु का बंध मध्यम परिणाम में होता है, इसलिए आयु के सन्मुख वाला जीव लिया। इसलिए आयु बंध के अभिमुख हुए जीव के अंतिम समय में उत्कृष्ट स्वामित्व नहीं दिया गया है। अब कर्म स्थिति के प्रथम समय में बंधा हुआ द्रव्य उदय स्थिति में ही पाया जाता है, क्योंकि उसकी शक्ति स्थिति एक समय शेष रहती है। अभी जो कर्म स्थिति का पहले समय में बांधा हुआ द्रव्य अभी बाकी है ना, वो अभी उदय में आ रहा है, अभी उसका उत्कर्षण होकर वो ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि ये अंतिम समय उसका। कर्म स्थिति के द्वितीय समय में संचित हुआ द्रव्य उदयादि 2 स्थितियों में पाया जाता है, जैसे हमने दूसरे समय में बांधा था, नया बांधा था ना, कर्म स्थिति के पहले समय में कोई द्रव्य बांधा था उसका तो अंतिम निषेक उदय रूप है, और जो उसके बाद वाले बांधा था उसका द्विचरम उपांत्य निषेक उदय में है यानी उसके दो अभी निषेक बाकी है, सत्ता में पड़े हैं, क्योंकि उसकी शक्ति स्थिति दो समय शेष रहती है। इस प्रकार सब समय प्रबद्धों की अवस्थान के योग्य स्थितियां कहनी चाहिए। तो तीसरे समय में बांधे हुए कि तीन निषेक बाकी है, इस तरह से जिसके जिसके जितने निषेक स्थितियां यानी निषेक बाकी है उन सब की टोटल करेंगे हम, उतने सत्ता में पड़े हैं अभी। और यह नियम भी नहीं है, क्योंकि पल्लोपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण समय प्रबोधों की अक्रम से गुणित घोलमान आदि अवस्थाओं के होने पर निर्जरा पाई जाती है। क्या कहते हैं, ये कोई ऐसा नहीं कि जो पहले समय में बांधा था, क्योंकि हर समय उतना उत्कृष्ट नहीं बांध रहे ना, कभी कम स्थिति वाला बांध रहे, कभी ज्यादा स्थिति वाले बांध रहे, कोई तो जल्दी खिर जाएंगे, तो कभी कभी तो अपकर्षण होकर भी खिर जाते हैं। तो ऐसा कोई पक्का नियम नहीं कि वो तो जिस समय बांधा है उतने उसके ही निशे कितने ही रहे, ऐसी कोई बात नहीं, उसमें भी वेरिएशन बहुत हो सकता है। इससे यह निष्कर्ष निकला, कर्म स्थिति का प्रथम समय प्रबद्ध गुणित कर्मांशिक जीव के अंतिम समय में उत्कर्षण के अयोग्य है। यानी अभी उसका अंतिम समय है, अभी उसका उत्कर्षण इससे ज्यादा नहीं हो सकता। द्वितीय समय प्रबद्ध भी ये भोग हुआ है, द्वितीय समय प्रबद्ध भी उत्कर्षण के अयोग्य है। इस प्रकार कर्म स्थिति के प्रथम समय से लेकर 3000 वर्ष तक आगे जाकर बंधा हुआ समय प्रबद्ध भी उत्कर्षण के अयोग्य है, क्योंकि इनकी अति स्थापना और निक्षेप नहीं पाया जाता। यानी इनका भी उत्कर्षण नहीं होगा, कितने तक के वो तो आबादा काल देखा था ना हमने, 3000 वर्ष और एक समय तक, किंतु एक समय अधिक 3000 वर्ष आगे जाकर बंधा हुआ समय प्रबद्ध उत्कर्षण के अयोग्य नहीं है, उनका उत्कर्षण हो सकता है, क्योंकि 3000 वर्ष प्रमाण आबाधा को अतिस्थापित करके आगे की एक स्थिति में इसका निक्षेप पाया जाता है। वो हमने अतिस्थापना वाली देखा था विस्तार में, तो वहां तो निषेक नहीं होते 3000 वर्ष में, और जो नया नया बंदा होगा तो वो 3000 वर्ष वाला छोड़कर उसके साथ उसका उत्कर्षण हो सकता है। नए हमेशा ऐसी जो कंडीशन है कि नया बंद के साथ उसका उत्कर्षण होता है, यानी अभी कोई उत्कर्षण होगा भी, ये उपांत समय की बात कर रहे हैं ना, इसका एक निषेक बाकी है, किसी के दो निषेक बाकी है, किसी के तीन निषेक बाकी है, किसी के चार निषेक बाकी है, परंतु अभी उत्कर्षण का क्या अर्थ होता है, डायरेक्ट इसमें कोई उत्कर्षण नहीं होता, नए बंध के साथ उत्कर्षण होगा। तो नया बंध 3000 वर्ष की आबादा है, तो 3000 वर्ष की आबादा के ऊपर इसके निषेक है, तो उसमें उसका उत्कर्षण होगा ना। तो 3000 वर्ष के समय उन तक का तो उत्कर्षण नहीं होगा, कि उतनी तो अपति स्थापना चली जाएगी और उसके ऊपर उत्कर्षण होगा, उसका उत्कर्षण होगा तो यहाँ का द्रव्य कम हो जाएगा। हमें तो गुणित कर्मांशिक को लेना है मैक्सिमम, अभी अंत समय वाला हमको स्थापित करना है वहां का। तो देखो, किंतु एक समय अधिक 3000 वर्ष आगे जाकर बंधा हुआ समय प्रबद्ध उत्कर्षण के अयोग्य नहीं है, क्योंकि 3000 वर्ष प्रमाण आबाधा को अतिस्थापित करके आगे की एक स्थिति में इसका निक्षेप पाया जाता है। दो समय अधिक 3000 वर्ष आगे जाकर बंधा हुआ समय प्रबद्ध भी उत्कर्षण के अयोग्य नहीं है, ये पहले जो बांधा हुआ था उसकी बात है, वो शक्ति उसकी उतनी बाकी है ना, इसलिए उसकी बात है, वो पहले समय में बंधे हुए की बात है। इस प्रकार तीसरी लाइन, अति स्थापना को अवस्थित करके तीन समय आदि के क्रम से कर्म स्थिति के भीतर बांध कर एक समय अधिक बंधावली को गलाकर स्थित हुए समय प्रबद्ध के प्राप्त होने तक निक्षेप ही बढ़ाना चाहिए। क्या कहते हैं? ये अति स्थापना को अति अवस्थित करके ने भी फिक्स हो जाते हैं ना। तीन समय आदि के क्रम से, पहले तो ये पूरे 3000 वर्ष वाली वो अति स्थापना होगी, बाद में वो कमती कमती होती एक आवली होती ना, अति स्थापना वाली कहेंगे उसको। अपने अपने समान निषेक के ऊपर एक आवली के ऊपर उसका उत्कर्षण हो सकता है। परंतु कंडीशन क्या है यहाँ? कर्म स्थिति के भीतर वाले जो बंधे हुए हैं, क्योंकि हमें तो वो गुणित कर्मांशिक वाले को लेना है ना, किसका उत्कर्षण होकर वो यहाँ पर स्थित है। अभी नरक भव का अंतिम समय में वहां कितने परमाणु अधिक से अधिक ऊपर आते हैं उसकी बात चल रही है। अब कहते कंडीशन क्या है? एक समय अधिक बंधावली को गलाकर स्थित हुए समय प्रबद्ध। कोई भी समय प्रबद्ध है, बंधावली ने बंद होने के बाद एक आवली, तो उतने समय तक उसमें वो कुछ भी उत्कर्षण अपकर्षण कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए वो बंधावली का नियम बताया। बंधावली को गला करने, बंधावली बीत जाने पर निक्षेप ही बढ़ाना चाहिए। यानी वो अति स्थापना नहीं, उसमें वो तो अवस्थित है, फिक्स है, अभी निक्षेप बढ़ाते जाएंगे। किंतु अगलित बंधावलियों का न तो उत्कर्षण ही होता है न अपकर्षण ही। बंधावली वाली जो काल है, बंध के बाद एक आवली तक, उनमें अपकर्षण उत्कर्षण कुछ नहीं होता। इस तरह जिस प्रकार कर्म स्थिति के अंतिम समय में ठहरा कर उत्कर्षण का विचार किया गया है, उसी प्रकार कर्म स्थिति के द्विचरम समय से लेकर प्रथम समय तक के समयों को विवक्षित करके उत्कर्षण विधि का कथन करना चाहिए। यानी यहाँ हमको मैक्सिमम सत्व वाला लेना है तो द्विचरम त्रिचरम ऐसा लिया ना उन्होंने, तो वो पहले वाले भी जो समय थे वो उत्कर्षण होकर यहाँ कौन कौन आए हैं उसको भी विचार कर लेना चाहिए। कहाँ पर
प्रथम समय तक के,
देखो फिर पढ़ती है उसकी। इस तरह जिस प्रकार कर्म स्थिति के अंतिम समय में ठहरा कर, ये जीव अभी अंतिम समय में है, उत्कर्षण का विचार किया, यहाँ तक अंतिम समय में आया है, यहाँ उत्कर्षण किस किस का होता है उसकी बात यानी सोची। उसी प्रकार ये अंतिम समय की बात थी, कर्म स्थिति के द्विचरम समय से लेकर प्रथम समय तक के समयों को विवक्षित करके उत्कर्षण विधि का कथन करना चाहिए। प्रथम समय ने कर्म स्थिति का प्रथम समय, कौन कौन सा द्रव्य उत्कर्षण करके आया है उसकी बात यहाँ कर रहे हैं। इस प्रकार इस विधि से संचित हुए ने, अभी संचय हुए ना, इकट्ठे हुए उत्कृष्ट ज्ञानावरण के द्रव्य के उपसंहार का कथन करते हैं। ये पूरी विधि बताई कौन से जीव को ये सारी बातें होगी, अब इसको बता दे। शंका, उपसंहार किसे कहते हैं? उसका समाधान, कर्म स्थिति के प्रथम समय से लेकर अंतिम समय तक के इन समयों में बांधे गए सब समय प्रबद्धों के अथवा प्रत्येक के प्रमाण की परीक्षा का नाम उपसंहार है। कर्म स्थिति के पहले समय से लेकर अभी तक कितने कितने बांधे गए हैं उसका सब प्रमाण वगैरह देखना। आपका प्रश्न है ज्ञानावरण का आवरण किस में है, आप आवरण यानी अनुभाग की बात कर रहे हैं, और यहाँ गुणित कर्मांशिक में
कर्मों की संख्या
वर्ग, हाँ, परमाणुओं की संख्या की बात चल रही है।
जितने परमाणु ज्यादा उतना आवरण ज्यादा।
नहीं, जितना परमाणु ज्यादा उतना आवरण ज्यादा, ऐसा नहीं है। जितना अनुभाग की अपेक्षा उसका उदय मिलता है, परमाणु की संख्या की अपेक्षा नहीं। परमाणु की संख्या तो योग पर निर्भर है ना, हमने देखी थी। पंचेंद्रिय जीव है वो ज्यादा ग्रहण करेंगे। आपका कहना है किस पर आवरण ज्यादा है, संगी पंचेंद्रिय पर के एक इंद्रिय पर? आवरण तो एक इंद्रिय पर ज्यादा है, आवरण ज्यादा है, अनुभाग उसका ज्यादा है। परमाणु की संख्या भी यहाँ ज्यादा हमने घटित की है। अब यहाँ से कोई आगे तिरंज में जाएगा और वहां से एक इंद्रियों में जाएगा, उसके सत्ता में शुरू में तो ज्यादा परमाणु है, तो वहां जितना जितना काल बिताएगा उतना उतना उसका फिर कर चला जाएगा। वो अनुभाग की अपेक्षा ज्ञानावरण वहां ज्यादा है, ज्ञान का आवरण ज्यादा है, संकलेश है वहां पर। हाँ, यहाँ तो अनुभाग भी लिया है संकलेश में, फिर भी यहाँ योगों की मुख्यता है, क्योंकि संकलेश के साथ वहाँ योग भी है ना, उसका जुड़ाव संगी पंचेंद्रिय वाला है। यहाँ तो परमाणु की संख्या गुणित कर्मांशिक वाला जो लिया, क्योंकि स्थिति भी लंबी, संकलेश क्यों लिया, स्थिति लंबी बन जाएगी, अधिक काल तक जीव के साथ रहेगा, इसलिए लिया उसको। स्थिति लंबी बन जाएगी और उसका उत्कर्षण होगा। ये यहाँ ज्यादा हो जाएगी ना, नारकी के संकलेश ज्यादा हो जाएगी, कृष्ण लेशा है और वहां तो लेशाएं बदलती रहेगी। देखो अभी
उपसंहार किसे कहते
हैं? हाँ, उपसंहार किसे कहते हैं? कर्म स्थिति के प्रथम समय से लेकर अंतिम समय तक के इन समयों में बांधे गए सब समय प्रबोधों के अथवा प्रत्येक के प्रमाण की परीक्षा का नाम उपसंहार है। यानी सब समय प्रबोधों का प्रमाण अथवा एक एक का प्रमाण अभी यहाँ बताएंगे। इसके तीन अनुयोग द्वार है, ये उपसंहार में तीन चैप्टर्स बताएंगे, संचय अनुगम, भागहार प्रमाण अनुगम और समय प्रबद्ध प्रमाण अनुगम। उनमें से संचयानुगम में तीन अनुयोग द्वार है, प्ररूपणा, प्रमाण और अल्पबहुत्व। प्ररूपणा की अपेक्षा कर्म स्थिति के प्रथम समय में संचित द्रव्य है, प्ररूपणा में वो है इतना ही बताएंगे। द्वितीय समय में संचित द्रव्य भी है, तृतीय समय में संचित द्रव्य भी है, इस प्रकार कर्म स्थिति के अंतिम समय तक ले जाना चाहिए, इस प्रकार प्ररूपणा समाप्त हो। प्ररूपणा में तो बस द्रव्य है वहां पर, संचित द्रव्य है इतना ही बताया। अब जो दूसरी प्ररूपणा कौन सी है, भागहार प्रमाणानुगम, सॉरी संचयानुगम में तीन अनुयोग द्वार है, मैंने ऊपर की लाइन पढ़ी। संचयानुगम की बात चल रही है, उसमें कितना संचय है उसका प्रमाण बताएंगे। प्ररूपणा तो हो गई, प्ररूपणा, प्रमाण और अल्पबहुत्व की बात चलेगी, उसमें प्ररूपणा की बात एक वाली हो गई। अब प्रमाण की बात करेंगे, जो समय प्रबद्ध कर्म स्थिति के प्रथम समय में बनता है उसके नारक भव के अंतिम समय में अनंत परमाणु है। इसी प्रकार सर्वत्र कहना चाहिए प्रमाण प्ररूपणा समाप्त हुई। कितना संचय है तो अनंत है। अब कहते हैं उसका अल्प बहुत्व, यानी वो संचय। हाँ, नहीं नहीं नहीं, आयु की बात नहीं है, कर्म स्थिति ने 30 कोड़ाकोड़ी का बांधने वाला है, उसकी बात है। अंतिम समय में उसके निषेक में कितने वो संचित संचय होते होते कितना, क्योंकि हर समय के समय प्रबद्ध में से कोई कोई निषेक वहां पर है ना, ये डेढ़ गुणानी गुणित हम कहते हैं, उतना तो हमेशा ही रहेगा उसका, वो तो अनंत होते हैं। नहीं, मगर वो तो उसका अंतिम निषेक है, परंतु यहाँ संचित द्रव्य की बात चल रही अनंत खिर गए अनंत रहना रह गया देखो कर्म स्थिति अभी ये अल्प बहुत बता रहे, कर्म स्थिति के प्रथम समय का संचय स्तोक है। कर्म स्थिति किसी विशिष्ट कर्म स्थिति का पहला समय से हमने 30 कोड़ा कोड़ी सागर का हमने पहला समय लिया ना, हाँ, उससे अंतिम समय का संचय असंख्यात गुना है। गुणकार क्या है? गुणकार अंगुल का असंख्यातवा भाग है। इसका कारण आगे कहेंगे। अब कहते अप्रथम अचरम समय का संचय उससे असंख्यात गुना है। गुणकार क्या है? गुणकार कुछ कम डेढ़ गुणानिया है। इसका कारण भी आगे कहेंगे। अब चौथी बात, अचरम समय संबंधी संचय, पहले अप्रथम अचरम लिया था, अचरम समय संबंधी संचय उससे विशेष अधिक है। ये तो उन्होंने वो सारे कारण मीमांसा आगे बताएंगे। अप्रथम समय संबंधी संचय उससे विशेष अधिक है। जो चरम की ओर वाला वो अचरम, हाँ, कर्म स्थिति का, कर्म स्थिति का ही हाँ उसकी बात चल रही। कर्म स्थिति संबंधी संचय विशेष अधिक है, और कर्म स्थिति के सब द्रव्य की संदृष्टि यह है, वो भी मूल में देखना है। इस प्रकार संचय अनुगम समाप्त हुआ। मूल में यानी ऊपर जो लिखा है वो ये हमने नौ वाले तो अंतिम समय में होंगे। देखो क्या है, ये ऊपर जो टेबल है ना, उससे पहले समय प्रबद्ध है, पहले समय में उसने 6300 परमाणु बांधे, ये आगे वो सब समझाएंगे। ये निषेक रचना हम देखते थे ना, हाँ, पहले समय से लेकर उसका संचय कितना है। अभी देखते हैं आगे आएगा, ये निषेक रचना वगैरह आगे सब समझाएंगे। ये तो संचय की बात हो गई। हाँ, अब भागार प्रमाणानुगम, और उसकी बात करते हैं, उसका कथन करते हैं, भागार प्रमाणानुगम का कथन करते हैं। यथा कर्म स्थिति के प्रथम समय में संचित द्रव्य का भागार अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण है, जो असंख्यात उत्सर्पिणी और असर्पिणियों के जितने समय है उतना है। अंगुल कितना बड़ा है? अंगुल के असंख्यात विभाग में जितने प्रदेश है तो उतने ही समय असंख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणियों के समय है उतना है। हमको लगता है अंगुल क्या इतना सा है शंका, ये बात इस पर हमने बहुत पहले चर्चा भी हुई थी, जो इतना है ऐसा है ना, वो काल प्रमाणानुगम में इसकी बहुत चर्चा आई थी पहले। यह किस प्रमाण से जाना जाता है? उसका समाधान, कर्म स्थिति के प्रथम समय में बंधे हुए समय प्रबद्ध का सबसे उत्कृष्ट संचय सर्वसंक्लिष्ट मिथ्या दृष्टि के द्वारा 3000 वर्ष प्रमाण आबाधा करके आबाधा से हीन 30 कोड़ाकोड़ियों की प्रदेश रचना करते हुए चरम स्थिति में निषिक्त द्रव्य प्रमाण है, ऐसा प्रावृत सूत्र में कहा गया है। देखो, हर समय कर्म की निषेक रचना होती है। अब यहाँ ऐसा जीव लिया, उसने 30 कोड़ा कोड़ी का बंधन किया, कर्म स्थिति बांधी ना, ज्ञानावरण की बात चल रही इसलिए, और उसमें भी मिथ्या दृष्टि लिया, क्यों? समय दृष्टि कितना बंधेगा? अंत कोड़ा कोड़ी, इसलिए मिथ्या दृष्टि लिया, और वो भी सर्वसंक्लिष्ट मिथ्या दृष्टि लिया, क्योंकि वो प्रायोगिक लब्धि वाला भी मिथ्या दृष्टि लेंगे तो वो भी अंत कोड़ा कोड़ी हो जाएगा, और उसके भी हिसाब स्थिति कट हो जाती है ना, इसलिए सर्वसंक्लिष्ट मिथ्या दृष्टि। तो उसकी जो निषेक रचना है, तो 3000 वर्ष तक तो कोई निषेक रचना ही नहीं है, आबादा काल है, उसके बाद 1, 2, 3, 4 ऐसे निषेक होते हैं, कितने तक? 30 कोड़ा कोड़ी काल तक, 30 कोड़ा कोड़ी सागर हो। देखो इसको फिर पढ़ती हूँ। कर्म स्थिति के प्रथम समय में बंधे हुए समय प्रबद्ध का सबसे उत्कृष्ट संचय सर्वसंक्लिष्ट मिथ्या दृष्टि के द्वारा 3000 वर्ष प्रमाण आबाधा करके आबाधा से हीन 30 कोड़ा कोड़ियों की प्रदेश रचना करते हुए, जिसको हम निषेक रचना भी कहते हैं, चरम स्थिति में निषिक्त द्रव्य प्रमाण है, ऐसा प्रावृत सूत्र में कहा गया है। निषिक्त ने डाला हुआ, निक्षेप किया हुआ, हमने पहले देखा था ज्यादा संक्लेश वाले जीवों की हम हमेशा निषेक रचना कैसे देखते हैं, आबादा काल के ऊपर ऐसे त्रिकोणात्मक निषेक रचना देखते हैं, बहुत संक्लेश परिणाम होते तो उल्टी होती वो निषेक रचना, उसका प्रदेश विन्यास में हमने देखा था कि उत्कर्षण भी होता है और ये उल्टा बनते हैं। देखो ये पेज नंबर निकालना, चवालीस पृष्ठ, वहां देखो दूसरे लाइन, इसलिए तीव्र संक्लेश विलोम रूप से प्रदेश विन्यास का कारण है, मिला 44 पृष्ठ पर दूसरी लाइन, और मंद संक्लेश अनुलोम रूप से प्रदेश विन्यास का कारण, प्रदेश विन्यास यानी प्रदेश की रचना, ये अनुलोम यानी ऊपर घटता हुआ, ऐसे प्रदेश निषेक रचना होती है ये गोपुच्छकार, ये मंद संक्लेश में, और जिसको तीव्र संक्लेश हो तो ऊपर के निषेक में मैक्सिमम द्रव्य है और नीचे कम है, इसको कहते हैं विलोम रूप, ये विलोम रूप विन्यास, और ये है अनुलोम रूप प्रदेश विन्यास। इसलिए यहाँ ये तीव्र संकलेश वाला मिथ्या दृष्टि लिया, ये विलोम ऊपर ज्यादा है, यहाँ लिखा ना अंतिम निषेक में, अंतिम स्थिति में निषिक्त किया, ऐसे लिखा था देखो, उसका संचय कहाँ ज्यादा है तो अंतिम स्थिति में। यहां लिखा देखो तीसरी लाइन में अपने 113 पृष्ठ पर समाधान के तीसरे लाइन में, चरम स्थिति में निषिक्त द्रव्य प्रमाण है। उसने चरम स्थिति का निषेक जो है, स्थिति यानी निषेक, चरम स्थिति यानी वो अंतिम जो उसका निषेक है उसमें उसके प्रदेश यानी संख्या ज्यादा है, वहां उसने निषिक्त यानी वहां डाला हुआ द्रव्य ज्यादा है। यथा अब वो समझाते कषाय प्रावृत में स्थित्यंतिक नामक एक अर्थ अधिकार है, उसके तीन अनुयोग द्वार है, समुत्कीर्तना, स्वामित्व और अल्पबहुत्व। उनमें से समुत्कीर्तना अधिकार में उत्कृष्ट स्थिति प्राप्त, निषेक स्थिति प्राप्त, अद्धान निषेक स्थिति प्राप्त और उदय स्थिति प्राप्त द्रव्य का निर्देश किया गया है। द्रव्य ने परमाणु कहाँ जाता है उसकी बात है। उनमें जो समय प्रबद्ध कर्म स्थिति काल तक रहकर निर्जीर्ण होने वाला है, पूरे स्थिति प्रमाण रहकर जो खिर जाएगा, उसके उदय स्थिति को प्राप्त हुए पुद्गल स्कंधों की अग्र स्थिति प्राप्त संज्ञा है। तो उदय रूप जो निषेक है उन पुद्गल स्कंधों को कहते हैं अग्र स्थिति प्राप्त निषेक। जो कर्म जिस स्थिति में निषिक्त है, निषिक्त है ने जहां डाला हुआ है, वह अपकर्षण और हुआ, वह अपकर्षण और उत्कर्षण द्वारा अधस्तन व उपरिम स्थिति को प्राप्त होकर फिर से अपकर्षण व उत्कर्षण द्वारा उसी स्थिति को प्राप्त होकर यथा निषिक्त परमाणुओं के साथ उदय में दिखता है, वह निषेक स्थिति प्राप्त कहलाता है। क्या कहें, ये तो अलग अलग पद्धति से बताते। यहाँ कोई कर्म की ऐसी निषेक रचना हुई तो क्या हुआ, कुछ परमाणु यहाँ से लेकर नीचे अपकर्षण होकर नीचे आए, इस निषेक में से निकले थे और फिर उत्कर्षण होकर उसी निषेक में चले गए। पहले अपकर्षण होकर नीचे आए थे, फिर उत्कर्षण होकर ऊपर चले गए, या कोई ऐसे है कि उत्कर्षण होकर नए बंध के साथ यहाँ चले गए और फिर अपकर्षण होकर अपने मूल जगह पर आ गए, तो उसको कहते हैं निषेक स्थिति प्राप्त। अब नीचे के दूसरे ओर दो बताए ना, एक तो अग्र स्थिति प्राप्त है ने उदय में जो है वो, ये निषेक स्थिति प्राप्त। अब जो कर्म जी कर्म हुआ है, जो कर्म करना, जो कर्म जिस स्थिति में निषिक्त होकर अपकर्षण व उत्कर्षण के बिना उसी स्थिति में उदय में देखा जाता है, दिखता है, वह अद्धा निषेक स्थिति प्राप्त कहलाता है। यानी जहां पर है वहीं पर उसी पोजीशन में वो उत्कर्षण अपकर्षण होता नहीं, वहीं पर वो उदय में आता है। तथा जो कर्म जहां तहां उदय में देखा जाता है वह उदय स्थिति प्राप्त कहा जाता है। उनमें से अग्र स्थिति ने अंतिम निषेक में जो रहे कर्म स्थिति प्रमाण रहकर जो उदय में आता है, उसको हमने देखा था ना, पूरे स्थिति प्रमाण रहकर जो उदय में आएगा उसको अग्र स्थिति प्राप्त कहा था। उनमें नीचे से तीसरी चौथी लाइन में था ना अग्र स्थिति प्राप्त, नीचे से पांचवी लाइन में देखो, उसके ऊपर से वाक्य चला है, उनमें जो समय प्रबद्ध कर्म स्थिति काल तक रहकर निर्जीर्ण होने वाला, पूरे स्थिति रहकर जो निकलेगा उसके उदय स्थिति को प्राप्त हुए पुद्गल स्कंध, वो कर्म स्थिति तक रहा, अभी वो उदय में आया तो उसको अग्र स्थिति प्राप्त कहेंगे। उत्कृष्ट स्थिति तीस कोड़ा कोड़ी तक रहकर जो निकलेगा उसका अग्र स्थिति उसी को कह रहे हैं। हाँ, उत्कृष्ट स्थिति तक रहा ना वो, और बाद में उदय में आया अंतिम समय में। अब उसकी बात यहाँ कर रहे 114 पृष्ठ पर। उनमें से ये चार प्रकार पहले बताए उन्होंने, उनमें से मिथ्यात्व कर्म का अग्र स्थिति को प्राप्त हुआ द्रव्य एक अथवा दो परमाणु होते हैं। 70 कोड़ा कोड़ी सागर की बात है नहीं। इस प्रकार उत्कृष्ट रूप से सर्व संक्लिष्ट संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक द्वारा कर्म स्थिति के अंतिम समय में जितना द्रव्य निषिक्त होता है उतना होता है, ऐसा कषाय प्रावृत में कहा है। इससे जाना जाता है कि उक्त भागहार अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। वो कितना द्रव्य निषिक्त होता है उसका भागहार बता रहे हैं, भागहार की बात चल रही है। अब कहते हैं भागहार के बाद क्या है, समय प्रबद्ध प्रमाण अनुगम। एक समय प्रबद्ध की निषेक रचना के अज्ञात होने पर चूंकि अंतिम निषेक का प्रमाण नहीं जाना जा सकता है, अतः उसके प्रमाण का निर्णय कराने के लिए एक समय प्रबद्ध के निषेकों की प्ररूपणा करते हैं। एक समय प्रबद्ध की जो निषेक रचना होती है उसको जाने बिना हम आगे की बात नहीं कह सकते, तो यहाँ एक समय प्रबद्ध में वो जो निषेक रचना का जो प्रमाण है उसको बताते हैं। उसमें 6 अनुयोग द्वार है। ये जो एक समय प्रबद्ध की जो निषेक रचना होती है उसमें 6 अनुयोग द्वार बताएंगे। एक तो प्ररूपणा, दूसरी है प्रमाण, तीसरी बात है श्रेणी, 4 है अवहार, 5 है भागा भाग और 6ठा है अल्पबहुत्व। ऐसे ही 6 हमने पहले भी देखे थे ना, वो योग के बारे में देखे थे। उसमें भी सर्वप्रथम संगी मिथ्या दृष्टि पर्याप्त सर्व संक्लिष्ट जीव के द्वारा बांधे जाने वाले मिथ्यात्व कर्म की प्रदेश रचना की प्ररूपणा करते हैं। यह समझाना है ना, ये प्रदेश रचना क्या होती है समय प्रबद्ध में, उसके लिए मिथ्यात्व कर्म को यहाँ लिया। यथा 7000 वर्ष प्रमाण आबाधा को छोड़कर, आबाधा का 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद किया है तो 7000 वर्ष की आबाधा होगी। जो प्रदेशाग्रह ने जो परमाणु प्रथम समय में निषिक्त होता है यानी उसको हम कहेंगे पहला निषेक, वह है पहले समय में निषिक्त होने वाला, प्ररूपणा चल रही ना, तो पहला निषेक है। जो प्रदेशाग्र द्वितीय समय में निषिक्त होता है वह भी है। ऐसे कितने समय तक वह है कहना पड़ेगा। 70 कोड़ा कोड़ी सागर के समय में से 7000 वर्ष कम कर दो, उतने हर समय में वो निषेक है कहेंगे, यानी उसके प्रदेश इतने सारों में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। इस प्रकार 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम के अंतिम समय तक ले जाना चाहिए। प्ररूपणा समाप्त हुई, अपना लेक्चर भी यहीं समाप्त होता है आज का। जावाणी द्वितीय समय में निषेक तो होता है वह भी है। ऐसे कितने समय तक वह है कहना पड़ेगा। 70 कोड़ा कोड़ी सागर के समय में से 7000 वर्ष कम कर दो, उतने हर समय में वो निषेक है कहेंगे, यानी उसके प्रदेश इतने सारों में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। इस प्रकार 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम के अंतिम समय तक ले जाना चाहिए। प्ररूपणा समाप्त हुई, अपना लेक्चर भी यहीं समाप्त होता है आज का। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो रो।